लक्ष्मण जी जन्म से साथ, जन्म से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी अभी आए हैं और अभी कह दिया कि तुम मुझे लक्ष्मण जी से दुगने प्रिय हो। अरे इतना ही कह देते कि तुम मुझे लक्ष्मण जी के समान प्रिय हो तो भी बात समझ में आती, और कह देते तुम लक्ष्मण जी से मुझे दुगने प्रिय हो, क्या मतलब है? हनुमान जी से बाद में प्रभु ने पूछा था, अच्छा हनुमान मैंने जब ऐसा कहा तो तुम्हें कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा, महाराज जब आपने कहा ना लक्ष्मण जी के सामने ही कि मैं आपको लक्ष्मण जी से दुगना प्रिय हूं, तभी मेरी सारी भक्ति लक्ष्मण जी के चरणों में चली गई, मैं उनका अनन्य भक्त बन गया। क्यों? मैंने समझ लिया महाराज लक्ष्मण जी आपके प्राण हैं और इसीलिए आपको कोई संकोच नहीं होता है जो लक्ष्मण जी आपके इतने साथ, और आप कह दें मैं एक अपरिचित व्यक्ति और उनके सामने ही तुलना करके कह रहे हैं कि मैं उनकी अपेक्षा आपको दुगुना प्रिय हूं। तो महाराज तो मैं समझ गया यदि आपके कोई प्राण है तो लक्ष्मण जी हैं। हम कह देते हैं भाई तुम मुझे प्राण से भी बढ़कर के प्रिय हो। क्यों कहता हूं? मुझे मालूम है कि प्राण किसका क्रोध नहीं करेगा, मुझसे रूठेगा नहीं, ऐसा नहीं कहेगा तुमने कैसे कह दिया, वह मुझसे भी बढ़कर के प्रिय है क्योंकि प्राण मेरा अपना है, इसीलिए मैं प्राण की तुलना सबसे कर सकता हूं, तुम मुझसे प्राण से बढ़कर के प्यारे हो। मैंने समझ लिया महाराज लक्ष्मण जी आपके प्राण हैं, और ठीक है हम लोग आपके प्रिय हैं पर लक्ष्मण जी आपके प्राण हैं। ऐसे लक्ष्मण जी हैं, इनके संबंध में जो और कुछ मन में उठेगा वह कल आपके समक्ष रखें।
आइए भगवत नाम संकीर्तन से आज का चिंतन शुरू करें।
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
कल लक्ष्मण चरित्र पर चर्चा करते हुए हमने कहा था कि वे प्रभु श्री राम के हर प्रसंग के साथी हैं। किसी भी रस का प्रसंग क्यों न हो, श्री लक्ष्मण तदनुरूप अपने को ढाल लेते हैं, यही उनकी विशिष्टता है, और इसीलिए प्रभु श्री राम उनके बिना रह नहीं सकते। जैसे श्री लक्ष्मण श्री राम को छोड़कर के नहीं रह सकते, वैसे ही श्री राम भी श्री लक्ष्मण को छोड़कर के नहीं रह सकते। यदि यह बात किसी को ज्ञात थी तो वे सबसे पहले महापुरुष थे, महर्षि विश्वामित्र। इसीलिए जब वे राजा श्री दशरथ से कहते हैं पुत्र की मांग करते हुए, तो कहते हैं सानुज आप श्री राम को मुझे दीजिए। सानुज देह मोहि रघुनाथा, श्री रघुनाथ को दीजिए पर अनुज के साथ। अनुज तो भरत भी हो सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से जन्म क्रम है उसमें अनुज पहले अनुज के रूप में श्री लक्ष्मण जी का स्थान आता है, और विश्वामित्र मुनि लक्ष्मण की ही मांग करते हैं भगवान श्री राम के साथ, क्योंकि वे जानते हैं कि यही जोड़ी ठीक है। श्री भरत भी अपने आप में महान है, उनकी महानता के संबंध में कोई दो मत नहीं हो सकते, परंतु उनकी महानता श्री राम की महानता के साथ मिलकर के ऐसा कुछ सृष्टि नहीं कर पाएगी जिस सृष्टि की हमें अपेक्षा है। दोनों संकोची हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मनोविज्ञान के महापंडित हैं, उनका संकेत यह है कि एक ही स्थान पर पास पास में दो कुएं खोद दें तो उसका क्या लाभ है, जब एक कुआं आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। आप कुआं इसलिए खोदते हैं कि जल चाहिए, आप अपनी पिपासा की तृप्ति करना चाहते हैं। एक कुआं ही आपके लिए पर्याप्त है तो दो कुओं की आवश्यकता क्यों है। हां, यदि एक कुआं आपने खोद दिया और वहीं पास में आपने एक वृक्ष लगा दिया तो दोनों की सार्थकता हो जाती है। कुआं जाता है नीचे, वृक्ष जाता है ऊपर, एक जल देता है तो दूसरी छाया प्रदान करता है। एक से आप अपनी प्यास बुझाते हैं तो दूसरे की छाया में अपने श्रम का हरण करते हैं। ये दो भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। इसलिए गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि ये दोनों श्री राम और श्री भरत यद्यपि एक ही समान है पर एक ही समान होने के कारण दोनों के साथ चलने में कोई सार्थकता नहीं, दोनों ही संकोची हैं। श्री राम भी संकोच करते हैं, भरत जी भी संकोच करते हैं। माता कौशल्या ने चित्रकूट में यह बात कहा दी थी, उन्हें भी ऐसा लगता था कि भरत यदि श्री राम के साथ चला जाए तो अच्छा होगा। मां कौशल्या के मन में भी यह बात थी, कारण क्या था, उनको लगता था कि भरत घर में रह करके अत्यंत क्लेश और दुख का अनुभव कर रहा है राम के बिना। इसीलिए सुनैना जी के माध्यम से जनक जी को उन्होंने संदेशा भिजवाया था, कहा था, बूढ़ स्नेह भरत मन माही रही नीक मोहिलागत नाही। अत्यंत स्नेह है भरत के मन में श्री राम के प्रति। ऐसा लगता है कि भरत को यहां पर रहने के लिए कह दिया गया है अयोध्या में, उसका मन नहीं लग रहा है। मुझे भी लगता है कि भरत साथ में चला जाए तो ठीक है। जनक जी ने यह प्रस्ताव प्रभु श्री राम के समक्ष रखा भी था और हम पढ़ते हैं कि स्वयं भरत जी ने ही यही प्रस्ताव रखा, कहा कि प्रभु यदि आप सम्मति देते हैं तो आप मुझे ले चलिए और लक्ष्मण को वापस लौटा दीजिए शत्रुघ्न के साथ, और यदि आप उचित मानते हैं तो मैं अकेला मन को जाऊं, आप तीनों के तीनों वापस लौट जाएं। यह प्रस्ताव भी भरत रखते हैं पर प्रभु इसे स्वीकार नहीं करते हैं और भरत को भी साथ लेना स्वीकार नहीं करते हैं। इससे भरत जी की महानता में कोई अंतर नहीं आता है। यह तो हम कह रहे थे उपयोगिता किसकी कितनी है इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है। तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी ही प्रभु के साथ रहकर के ठीक कार्य संपन्न करते हैं। फिर परशुराम जी ने भी कह दिया था, जब देखा बड़ा क्रोध आया, कह दिया था, सहज टेढ़ अनुहरैन ओही, राम तुम कैसे हो, तुम जितने सीधे हो तुम्हारा भाई उतना ही टेढ़ा है। मैंने सुना है तुम्हारा एक ऐसा भाई है जो तुम्हारे ही समान शील में व्यवहार में है और तुम उसे साथ में न रख करके इस टेढ़े भाई को रखते हो। भले ही परशुराम जी ने यह बात कही हो परंतु भिन्न संदर्भ में, व्यावहारिक संदर्भ में तो लक्ष्मण जी का ही साथ अपेक्षित है। जब इस प्रकार लक्ष्मण जी पर वे भला बुरा कहते हुए बरस रहे हैं, परशुराम जी हंस देते हैं लक्ष्मण जी, और हंसता देख करके एकदम कहते हैं कि हंसती देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम कैसा पापी भाई तुमने पा लिया है। वह हंस रहा है, हंस तो प्रभु भी रहे हैं, प्रभु भी हंसते हैं पर सिर झुका करके हंसते हैं, मन मुस्कान राम सिर नाए। प्रभु को भी इच्छा होती है कि मैं भी हंसू पर उन्हें संकोच है, लक्ष्मण जी को संकोच नहीं है इसलिए वे खुल करके हंसते हैं। तो हंसना तो दोनों चाहते हैं पर प्रभु संकोच के कारण नहीं हंस रहे हैं। और सिर झुका करके सोचते हैं कि अच्छा है गुनाह लखन कर हम पर रोसु। यह तो विचित्र बात है, गुनाह तो कर रहे हैं लक्ष्मण और मुनि हम पर रोष कर रहे हैं, और वे भी कहते हैं कि कतम सुधायते भर दोषु। यह सीधापन भी बहुत बड़ा दोष है, जो सीधा होता है उसी पर लोग बरसते हैं। तेरे जानी कहते हैं कि जो टेढ़ा होता है उसके प्रति कोई ज्यादा मानो उसे डर करके ही रहता है, डरे सबका वक्र चंद्रमा ही ग्रसे न राहु। जब चंद्रमा वक्र रहता है तो उसको राहु भी नहीं ग्रसता है, कितनी सुंदर कल्पना है। राहु ग्रसता है जब पूर्णिमा होती है तब चंद्रमा को, तो उसी पर कल्पना करते हुए अनुपेक्षा करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहलाते हैं कि जब चंद्रमा टेढ़ा होता है तो राहु भी ग्रसता नहीं है, सीधा जान करके सभी को उस पर बरसते हैं तो उस पर बरस रहे हैं। तो जो हो, यह जो लक्ष्मण जी की भूमिका है यह भूमिका अत्यंत आवश्यक है। वे मूर्खत है, वे उद्धत से मालूम पड़ते हैं, उनकी वाणी में अग्नि है, इसकी भी आवश्यकता है। यह प्रसंग हम देखते हैं जहां पर समुद्र के पास प्रभु बैठे हैं और उनसे रास्ता मांग रहे हैं। आप वह प्रसंग पढ़ते हैं, जब विभीषण जी कहते हैं, सलाह देते हुए कहते हैं, कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु सो सक तब सायक। रघुनाथ जी, मैं जानता हूं आपके बाण में इतनी शक्ति है कि वह कोटि सिंधुओं को एक साथ सोख सकता है। यद्यपि तदपि नीति असगाई विनय करिय सागर सन जाई। ठीक है यह, पर नीति यह कहती है कि हम सागर से जाकर के विनय कर लें, रास्ता मांग ले, पूछ ले। प्रभु भी कहते हैं, सखा कही तुम नीक उपाय करिय दैव जो हो सहाय। पर लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा। अति दुख होता है, यह कैसी बात है? लक्ष्मण जी सोचते हैं कि समुद्र से रास्ता मांगना, क्यों हम हाथ जोड़ करके अनुरोध करें, विनय करें? अति दुख पावा, उनको बहुत दुख होता है। नाथ कवन कर दैव भरोसा सोसिय सिंधु करिय मन रोसा कादर मन कहूं एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। कितनी कठोर बात कहेगी, ये दैव दैव कहते हैं, वे आलसी कहते हैं। और दैव किसने कहा था? प्रभु ने कहा था, विभीषण जी ने नहीं कहा था। करिए दैव जो हो सहाय, प्रभु को भी मानो इस प्रकार से कटाक्ष प्रभु के प्रति करने में लक्ष्मण जी चूकते नहीं हैं। कहते हैं ये जो दैव दैव कहते हैं, कादर मन कहो एक अधारा, ये कायर ही देवता की सहायता लेता है, कहता है दैव है भाग्य है, पर वस्तुतः आपको तो करना चाहिए, प्रभु निकालिए बाण, सिंधु को सोख लीजिए। प्रभु क्या करते हैं? सुनत बिहस बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हंसते हैं, जोरों से हंसते हैं बिहसी। प्रभु जोरों से हंसे, लक्ष्मण जी से कहा कि धीर धरो लक्ष्मण, जैसा तुमने कहा है हम वैसा ही करने वाले हैं, और यह जो समुद्र है रास्ता वह मानता नहीं है। विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सुखौ बाधि विसख कृसानु। बहुत हर्ष हुआ लक्ष्मण जी को, कहा कि अब प्रभु आप मेरी भाषा बोल रहे हैं, बाण ले आओ लक्ष्मण, अभी मैं बाधि को सुख देता हूं। तो यह जो पक्ष है, इस पक्ष से गोस्वामी जी एक दर्शन का हमें दर्शन कराते हैं। कौन सा वह दर्शन है? दैव पक्ष प्रबल अथवा पुरुषार्थ पक्ष प्रबल, यह कौन सा पक्ष है? यहां पर कटाक्ष किया है, मनुष्य भाग्यवादी होता है, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है, किसके बल पर यह संसार चलता है,
हम पुरुषार्थी बने या भाग्यवादी बने। लगता है कि लक्ष्मण जी ने भाग्य को एकदम काट दिया है, पुरुषार्थवादी बनने पर बहुत जोर दिया है। और ऐसा भी लगता है कि विभीषण जी की बातों को सुनकर के प्रभु पहले भाग्यवादी बने। उन्होंने कहा करिए दैव जो हो सहाय। तो यहाँ पर एक बात आती है कि गोस्वामी जी किस पक्ष का समर्थन करते हैं। तो कह दें गोस्वामी जी तो हैं पुरुषार्थ के समर्थक, पुरुषार्थ के बल पर हमारा भाग्य बनता है, दैव उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिस समय सेतु बांधा जा रहा था, आप पढ़ते हैं कि वानर और भालू बड़े बड़े पाषाण खंड ला रहे थे सेतु को बनाने के लिए, और बहुत श्रम के बाद, कई महीनों के श्रम के बाद वह सेतु बनकर के तैयार हो गया। जांबवंत जी आते हैं, प्रभु से विनती के स्वर में कहते हैं कि प्रभु आज्ञा हो तो सेना को उस पार जाने के लिए मैं कहूँ। तब यही एक बात है प्रभु की, यह जो सेतु बना है, पुल बना है, सकरा है, पार होने में विलंब लगेगा, हमारी सेना बड़ी है, तो मैं कुछ बाद में आकर के आपसे अनुरोध करूंगा चलने के लिए। प्रभु हंसते हैं सुन करके, कहते हैं चलो जांबवान, यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सका। तुम कहते हो कि पुल सकरा है इसलिए पार होने में विलंब लगेगा, तो देखूं यदि मैं तुम्हारी किसी प्रकार से सहायता कर सकूं। प्रभु जाते हैं, जाकर के वे सेतु पर खड़े हो जाते हैं और गोस्वामी जी वहां पर बहुत सुंदर चित्रण करते हैं। प्रभु जो ही जाकर के खड़े हुए, देखन कहां प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर बिंदा। प्रभु को देखने के लिए सारे जल चर बिंद प्रकट हो गए। जहां तक दृष्टि जाती है उस सेतु के दोनों ओर समुद्र मानो इन जलचरों की पीठ से भर गया है। सभी मानव सूर्य निकाल करके बाहर प्रभु को एकटक देख रहे हैं, यह विलक्षण दृश्य देखने को मिलता है। प्रभु हंसते हैं और कहते हैं जांबवान से, जांबवान तुम कहते थे कि पुल सकरा है, सेना को पार होने में समय लगेगा, लो कितना बड़ा पुल बन गया। समझ नहीं पाए जांबवान, जिस समय समझ पाए तो वे डरते हुए कहते महाराज आपका तात्पर्य क्या है, जलचरों की पीठ से बने इसको आप पुल कहते हैं, इस पर से मैं वाहिनी को उस पार जाने का आदेश दूं, यह तो बहुत खतरे की बात है महाराज, कि किसी बंदर ने जलचर की पीठ पर पैर रखा और जलचर जल में चला गया तो वैसे ही तो बंदर मर जाएगा, डूब जाएगा, वह तो भक्षण कर लेगा जलचर उसका, मानो भय होता है। गोस्वामी जी संकेत देते हैं, मनुष्य अपने बनाए पुल का तो भरोसा करता है पर भगवान के बनाए पुल का भरोसा नहीं करता है। हम ईश्वर की कृपा की बात तो करते हैं पर जिस समय ईश्वर की कृपा को जीवन में स्थान देने का समय आता है, हमें डर लगता है कि यह ईश्वर की कृपा का पुल टिकेगा तो, समय पर वह नष्ट तो नहीं होगा, वह कहीं धस तो नहीं जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, प्रभु ने देखा जांबवंत के मन में इस प्रकार का संशय है, कहते हैं तुम परीक्षा करके देख लो, देखो यदि पुल मजबूत है या नहीं, यदि पुल मजबूत दिखाई देता हो तब फिर ठीक है वाहिनी से कहो। फिर वहां पर संकेत दिया गया है कि बड़े बड़े पत्थर लेकर के बंदर मारते हैं जलचरों को, परंतु प्रभु ही बिलो कहीं तरही न तारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। कितनी कोशिश की उन जलचरों को हटाने की, कम से कम पत्थर की चोट खा करके ये जलचर पानी में डूब तो जाए, पर वे डूबते नहीं है, टकटकी लगा करके प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु ही बिलोकत तरही न तारे। प्रभु ने कहा अब तो परीक्षा कर ली, मेरा बनाया पुल भी तो ठीक है। और तब उसके बाद जांबवंत आज्ञा देते हैं वाहिनी को पार होने के लिए, और हम पढ़ते हैं कि एक साथ सब के सब पार हो जाते हैं, सभी सेतु बंध भय भीर अति कपिनभ पंथ उड़ाही अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। तीन रास्ते हो गए, बहुत से बानर थे वे तो अपने बनाए पुल पर से चले गए, बहुत से थे जो आकाश मार्ग से उड़ करके पार हो गए, और बाकी बहुत से थे जो भगवान की कृपा के पुल पर से जलचरों की पीठ पर से पैर रखते हुए उस सागर को पार करके चले गए। ये तीन ही तो रास्ते हैं। इस भव सागर को पार करने के, एक तो ज्ञानी है जो उड़ करके जाता है, एक तो भक्त है जो ईश्वर की कृपा के पुल पर से जाता है, और एक तो कर्मी है जो अपने बनाए पुल पर से जाता है। ये तीन ही रास्ते हैं, तीन रास्तों से जाकर के ये सारी वाहिनी उस सागर को पार कर लेती है। जब पार कर लेती है ये सारी सेना, तो प्रभु के पास जामवंत आते हैं, चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आप बड़े कौतुकी हैं, आप जब इतना सुंदर पुल इतने कम समय में बना सकते थे तो आपने यही पहले क्यों नहीं किया, इतना विलंब क्यों लगा दिया, इतने महीने चले गए इस पुल के बनाने में, यही यदि आपने पहले कर दिया होता तो समय का और उसी प्रकार श्रम का दोनों की ही रक्षा होती, दोनों की बचत होती। प्रभु हंसते हैं और हंस करके कहते हैं, जाम्बवान यदि बंदरों ने अपने पुरुषार्थ से वह पुल न बनाया होता तो मैं कहां पर खड़ा होकर के अपनी कृपा का पुल बनाता। यह जो समन्वय है गोस्वामी जी, जो समन्वय दिखाते हैं कि भगवान अपनी कृपा का पुल कहां पर खड़ा होकर के बनाए, यहां पर जीव अपने पुरुषार्थ का पुल बनाता है, तो पुरुषार्थ का पुल बनाए उस पर आकर के प्रभु खड़े होते हैं। तो यहां पर भी यही हम देखते हैं कि जो लक्ष्मण जी का पक्ष है वह कैसा पक्ष है, वह विलक्षण पक्ष है, वह दैव को काटते हैं, पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हैं, और प्रभु को अंत में उसी प्रकार लक्ष्मण जी की बात को मानना ही पड़ता है। कहते हैं ठीक है वैसे ही करेंगे, और वैसा करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसे अद्भुत लक्ष्मण जी हैं जो प्रभु के भीतर में भी सतत प्रेरणा भरने का कार्य करते रहते हैं। जैसा कि कल हमने कहा था, वे विरागी ब्रह्म को अनुरागी बनाते हैं, निष्पक्ष ब्रह्म को पक्षधर बनाते हैं, ऐसे ये लक्ष्मण जी हैं। और कैसे हैं लक्ष्मण जी, लगता है कि क्रोधी हैं, परंतु उनकी वंदना में कहा गया है, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, जहां पर कहा शीतल सुभग भगत सुखदाता, उनके जो चरण है चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। ये चरण कमल कैसे हैं, चरण कमल है कहते हैं शीतल, शीतलता का अनुभव होता है, ऊपर से देखने से तो लगता है कि वे तो अत्यंत क्रोधी हैं। अब क्रोध में अग्नि होती है, अग्नि में ताप होता है, ताप में शीतलता कहाँ है, तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके जो चरण कमल है अत्यंत शीतल है, गहराई से देखें तो मनुष्य शीतलता का ही अनुभव करता है। हम देखेंगे कि भले ही किसी औषध में ताप हो पर वह ताप हमारे रोग का शमन करता है और हमारे रोग को दूर करता है, रोग दूर हो गया तो शीतलता ही तो जीवन में आई। हम जब रोग से पीड़ित होते हैं तो ताप का अनुभव करते हैं, रोग दूर होता है तो शीतलता आती है। औषध में भले ही ताप हो पर वह औषध शीतलता प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार ये जो चरण कमल है लक्ष्मण जी के, भले ही ऊपर ऊपर से लगते हो कि लक्ष्मण जी क्रोधी हैं, उग्र स्वभाव के हैं, मुंहफट हैं, परंतु वस्तुतः वे रोग को दूर करके हमें शीतलता ही प्रदान करते हैं। व्यवहार उनका जो है वह अत्यंत शीतलता का है। प्रभु श्री राम अनशन कर रहे हैं समुद्र के तीर पर, गोस्वामी जी हमारे समक्ष प्रसंग रखते हैं, रावण ने गुप्तचर भेजे थे, रावण का यह जो दुर्ग है वह तो इतनी अच्छी तरह सुरक्षित है कि वहां पर मच्छर भी घुस नहीं सकता है। हम पढ़ते हैं हनुमान जी ने मच्छर के समान ही तो छोटा रूप धरा, मशक समान रूप कपि धरी, और वे लंका में प्रविष्ट होते हैं तो भी पकड़ लिए जाते हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा है रावण की। और प्रभु के पास कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, जो भी आए आ जाए, सुरक्षा की बात ही नहीं है। रावण अत्यंत सुरक्षा रखता है, क्यों, क्योंकि वह चाहता है कि उसका भेद कोई ना पाए। और प्रभु कैसे हैं, प्रभु कहते हैं हमारा भेद लेने कोई आए तो, प्रभु चाहते हैं कि तुम आओ, हे जीव तुम आओ हमारा भेद लेने को आओ। प्रभु मानते हैं कि जब जीव मेरा भेद लेने को आएगा तो मेरा होकर के रह जाएगा, इसीलिए वे बुलाते हैं कि तुम मेरा भेद लेने के लिए आओ। रावण चाहता है कि मेरा भेद कोई न पाने पावे, जो कमजोर व्यक्ति होता है जिसमें दुर्गुण होते हैं वही अपना भेद खोलना नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसका भेद न खुले, वह सुरक्षा करनी चाहता है, सब प्रकार से बाड़ लगा देना चाहता है, क्योंकि उसकी कमियां हैं, उसके दुर्गुण हैं, उसमें खोट है। पर श्री राम अद्भुत हैं, वे तो कहते हैं कि आवे लोग आमे आकर के हमारा जो भी भेद हो उसे पाने की चेष्टा करें। रावण के दो गुप्तचर आए, वे भी वानरों के साथ, वृक्षों के साथ, वहां पर भालुओं के साथ मन रूप बना करके हैं। कोई समझ नहीं पाता है कितने समय तक रहे, आए थे थोड़े समय के लिए, प्रभु का अद्भुत व्यवहार देखा, प्रेम पूर्ण, और वे वही रह जाते हैं और बातें करते हैं, श्री राम के प्रेम की बातें करते हैं। तो श्री राम के प्रेम की बातें करते करते उनके हृदय का कपट चला जाता है, कपट चला गया। अति जहां पर कहा गया कि अति सप्रेम गा, वहां से अत्यंत प्रेम के साथ वे भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं, और जिस समय वे वर्णन करते हैं उनके भीतर का कपट जो दुराव है वह नष्ट हो जाता है। तो वे असली रूप में आ गए, देखा कि बंदरों ने, अरे ये तो क्या बातें कर रहे हैं। वे बातें कर रहे थे, देखो हमारा स्वामी रावण और ये है श्री राम, श्री राम कैसे हैं, हमारा स्वामी रावण कैसा है, मानो इसी की चर्चा कर रहे थे। और वे श्री राम के गुणों में तल्लीन हो गए तो थोड़ी देर के लिए भूल गए कि हम रावण के दूत हैं, और त्यों ही प्रकट हो गया बंदरों के पास, यह मानो जाहिर हो गया, अरे ये तो रावण के दूत हैं, पकड़ लिए गए, सुग्रीव के पास लाया गया। सुग्रीव जी ने फरमान जारी कर दिया, अंग भंग करी पठमहु निशीचर। वहां पर रावण ने कहा था अंग भंग करी पठमहु बंदर, तो ठीक, यहाँ पर कहते हैं सुग्रीव अंग भंग करी पठमहु निशीचर, अंग भंग करो, नाक कान काट लो और भेज दो। तो इन्होंने राम की दुहाई दी, कहने लगे ये दोनों गुप्तचर देखिए, जब तक हम कपटी थे, हम छल कर रहे थे, कपट कर रहे थे, तब तक तो आप हमें पहचान नहीं पाए, और जब श्री राम के प्रभाव में पड़ करके, उनके प्रेम में पड़ करके हमने अपना कपट छोड़ दिया तो आप हमें पकड़ रहे हैं और आप हमें दंड देना चाहते हैं, यह आपकी कैसी नीति है। और फिर भी तरह तरह से पुकारने पर भी दीन पुकार तदप न त्यागे, वे पुकारने लगे फिर भी त्यागा नहीं, और वे तो दुहाई देते हैं प्रभु की। लक्ष्मण जी दूर से देख रहे हैं, उन्होंने देखा दूर से, बुलवाया दोनों को, तो सुग्रीव जी प्रसन्न हुए, चलो मैंने तो नाक कान काटने का ही आदेश दिया था, अब लक्ष्मण जी हैं जो तो प्राण दंड का ही आदेश देंगे। पहले तो सुग्रीव जी डर रहे थे कहीं प्रभु श्री राम बीच